प्रेरितों के काम अध्याय 19। पौलुस ऊपरी भाग में यात्रा करते हुए इफिसुस पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात कुछ शिष्यों से हुई। उसने उनसे कहा,
क्या विश्वास करते समय तुमने पवित्र आत्मा पाया था?
उन्होंने उससे कहा,
हमने पवित्र आत्मा के बारे में कुछ सुना भी नहीं।
उसने उनसे पूछा,
तुमने कौन सा बपतिस्मा लिया?
उन्होंने कहा,
यूहन्ना का बपतिस्मा।
तब पौलुस ने कहा,
इसमें कोई शक नहीं है कि यूहन्ना ने तुम्हें मन बदलाव का बपतिस्मा दिया था, लेकिन उसने कहा था कि यीशु मसीह जो आने वाले हैं उन्हीं पर तुम्हें विश्वास होना चाहिए।
यह सुनने के बाद उन्हें प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया गया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने तथा नबूवत करने लगे। वे सभी लगभग 12 लोग थे। आराधनालय जाकर वो 3 महीनों तक बिना डर बोलता रहा। वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बड़ी दलेरी के साथ वाद विवाद करता और समझाता रहा, परंतु कुछ लोगों ने अपने मन को सख्त कर लिया और विश्वास करने से इनकार किया। भीड़ के सामने यीशु के नाम की बेइज्जती भी की गई। पौलुस ने उन्हें छोड़ दिया और शिष्यों को अलग किया और हर रोज तरनुस की पाठशाला में पढ़ाता रहा। ऐसा 2 साल तक चलता रहा और एशिया प्रांत में रहने वाले यहूदी और यूनानी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन लिया। परमेश्वर ने विशेष अद्भुत सामर्थ्य के काम पौलुस के हाथों से किए, यहां तक कि रुमाल और अंगूठे उसकी देह से छुआकर बीमार लोगों पर रखे जाते थे। इन कपड़ों के छूते ही बीमारियां ठीक हो जाती थीं और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाती थीं। कुछ यहूदी झाड़ फूंक करके दुष्ट आत्माओं को निकाला करते थे। वे यीशु के नाम का इस्तेमाल करके दुष्ट आत्मा ग्रसित की तरफ देखकर कहते थे,
जिस यीशु का संदेश पौलुस देता है उन्हीं के नाम से हम तुम्हें आज्ञा देते हैं।
वहां एक यहूदी याजकों के प्रधान स्कीवा के 7 बेटे थे जो ऐसा किया करते थे। दुष्ट आत्मा ने उत्तर में कहा,
यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी, लेकिन तुम कौन हो?
जिस व्यक्ति में दुष्ट आत्मा थी वह उन पर लपका और उसने अपना जोर दिखा डाला, इसलिए वे उस घर में से नंगे और घायल हालत में भाग निकले। इफिसुस में रहने वाले सभी यहूदी और यूनानी लोगों को यह बात मालूम हो गई और उनके ऊपर डर छा गया। यीशु के नाम को बड़ाई मिली। जिन्होंने आकर विश्वास किया उन्होंने अपने गलत कामों को मान लिया और उनका खुलासा किया। बहुत से उन लोगों ने जो जादू किया करते थे अपनी किताबें लाकर सबके सामने जला डाली। जब उनकी कीमत आंकी गई तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर थी। इस तरह से प्रभु का वचन बड़ी सामर्थ्य से बढ़ता गया और प्रबल होता गया। इन सभी बातों के बाद पौलुस ने आत्मा में मकदूनिया और अखाया से होकर यरूशलेम जाने की ठान ली। उसने कहा,
वहां जाने के बाद मुझे रोम जाना चाहिए।
इसलिए अपने सहायक तिमोथी और इरास्तुस को उसने मकदूनिया भेज दिया, लेकिन खुद कुछ समय के लिए एशिया में ठहर गया। उसी समय इस बात के बारे में बड़ा उपद्रव हुआ। देमेत्रियुस नाम का एक सुनार था जो अर्तेमिस के लिए चांदी के मंदिर बनाता था और काफी कमाल लिया करता था। उसने अपने ही धंधे वाले लोगों को बुलाया और कहा,
लोगों, तुम्हें मालूम है कि ये धंधा हमारी आमदनी का एक जरिया है। साथ ही तुम देख और सुन रहे हो कि न सिर्फ इफिसुस लेकिन सारे एशिया में इस पौलुस ने लोगों को अपनी तरफ कर लिया है। उसने उन्हें कायल कर दिया है कि जिन ईश्वरों को हाथ से बनाया गया है वे ईश्वर हैं ही नहीं। इसलिए न ही यह धंधा अब खतरे में है, लेकिन ये कि महान देवी अर्तेमिस का मंदिर भी तुच्छ ठहराया जाएगा, जिसे सारे एशिया और दुनिया में पूजा जाता है, और उसकी सारी शान भी जाती रहेगी।
जब उन्होंने यह सुना तो गुस्से से भरकर चिल्ला उठे,
इफिसियों की अर्तेमिस महान है।
पूरे शहर में गड़बड़ी मच गई। लोगों ने पौलुस के यात्री सहयोगी गयुस और अरिस्तर्खुस जो मकदूनिया के थे पकड़ लिया और एक साथ मिलकर थिएटर में घुसे। जब पौलुस ने भीतर जाना चाहा, तो शिष्यों ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। एशिया के कुछ अधिकारियों ने, जो उसके दोस्त थे, यह विनती की कि रंगशाला में न जाएं। कुछ लोग एक बात कह रहे थे, दूसरे कुछ और। वहां बड़ी गड़बड़ी थी और ज्यादातर लोगों को यह नहीं मालूम था कि वे वहां क्यों हैं। उन्होंने अलेक्जेंडर को भीड़ में से खींच कर निकाला, क्योंकि यहूदियों ने उसे धक्का मारकर आगे कर दिया था। अलेक्जेंडर ने हाथ हिलाकर अपने पक्ष में कहने का इशारा किया। जब उन्हें मालूम पड़ा कि वह यहूदी है, तो लगभग 2 घंटे तक एक आवाज में चिल्लाते रहे,
इफिसियों की अर्तेमिस महान है।
तब शहर के मंत्री ने लोगों को खामोश करने के बाद कहा,
इफिसुस के लोगों, ऐसा कौन है जो ये नहीं जानता कि इफिसियों का शहर महान देवी अर्तेमिस और उनकी मूर्ति का उपासक है, जो आसमान से उतरी थी। ये देखते हुए कि इन बातों का इनकार नहीं किया जा सकता, तुम्हें खामोश रहना चाहिए और जोश में कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम इन लोगों को लाए हो जो ना तो मंदिर के लुटेरे हैं और ना ही तुम्हारी देवी को बुरा कहते हैं। इसलिए अगर देमेत्रियुस और दूसरे मूर्तिकारों को कुछ शिकायत है, तो अदालत और हाकिम के दरवाजे खुले हुए हैं, वहां पर उनके खिलाफ आरोप साबित किया जा सकते हैं। लेकिन यदि इसके अलावा कोई और विषय है, तो कानूनी सभा में उसका फैसला किया जा सकता है। आज के उपद्रव के बारे में जवाब देने का खतरा खड़ा हो सकता है, लेकिन इसका जवाब हम देंगे भी क्या?
ये सब कहने के बाद उसने सभा को बर्खास्त किया।